नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में फिर से स्वागत। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक कह सकते हैं बहुत बड़े ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसा टेक्स्ट जिसने पश्चिम की सोच, फिलॉसफी, थियोलॉजी सबको सदियों तक शिकिल दिया है।
हाँ, सेंट थॉमस एक्विनास की कालजयी कृति सुम्मा थियोलॉजिका।
बिल्कुल। और देखिए, ये सुनने में शायद लगे कि कोई बहुत पुरानी भारी भरकम किताब होगी जिसका आज क्या लेना देना।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये उन बुनियादी सवालों से जूझती है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे, क्या तर्क और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं?
हाँ, या फिर नैतिकता का आधार क्या है? क्या सही गलत बस अपनी अपनी सोच है? और सबसे बड़ा सवाल शायद कि हमारी जिंदगी का असली मकसद, असली मतलब क्या है?
सही कहा। तो आज हम अपने स्रोतों के आधार पर कोशिश करेंगे कि इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा सरल शब्दों में समझें।
हाँ, हमारा मिशन यही है कि एक्विनास की सोच का जो सार है उसे पकड़ें और देखें कि भाई लगभग 800 साल पहले लिखी गई बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं।
अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस महान विचारक की, सेंट थॉमस एक्विनास। इनका जन्म हुआ था करीब 1225 में इटली में, और वो भी एक काफ़ी अमीर कुलीन परिवार में।
हाँ, उनसे उम्मीदें तो थीं कि परिवार का नाम ऊंचा करेंगे, शायद सेना में जाएं या राजनीति में, लेकिन उन्होंने चुना एक बिल्कुल अलग रास्ता।
सब कुछ औका दिया उन्होंने, तो सांसारिक जीवन छोड़कर वो शामिल हो गए डोमिनिकन ऑर्डर में। ये भिक्षुओं का एक पंथ था जो ज्ञान और धर्म प्रचार पर जोर देता था।
और परिवार वाले इतने नाराज हुए थे, कहते हैं कि उन्हें पकड़कर करीब एक साल तक घर में बंद रखा गया था।
सच में, पर वो अपने इरादे के पक्के थे। बाद में एक्विनास पेरिस और यूरोप की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक महान प्रोफेसर और विचारक बने, और कैथोलिक चर्च ने उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च का सम्मान दिया जो बहुत ही कम लोगों को मिला है।
अब सवाल यह है कि उनकी खासियत क्या थी? वो समय थोड़ा अलग था। यूरोप में अरस्तू के दर्शन, उनकी फिलॉसफी फिर से सामने आ रही थी, अक्सर अरबी विद्वानों के अनुवाद के जरिए।
हाँ, और अरस्तू का जोर था तर्क पर, अनुभव पर, तो कई ईसाई विचारकों को लगा कि ये तो हमारी आस्था के लिए खतरा है।
बिल्कुल, और यहीं पर एक्विनास की जो प्रतिभा है वो सामने आती है। उन्होंने अरस्तू में खतरा नहीं देखा बल्कि एक अवसर देखा।
अच्छा, कैसे?
उनमें कमाल की क्षमता थी। वो ईसाई धर्मशास्त्र को भी गहराई से समझते थे, जैसे सेंट ऑगस्टीन के विचार, और साथ ही अरस्तु के तर्क और दर्शन को भी।
मतलब दोनों में महारत हासिल थी।
हाँ, और उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। अरस्तु का जो लॉजिक है, जो तर्क का ढांचा है, वो हमारे विश्वास को कमजोर नहीं करेगा बल्कि
उसे और समझने में मदद करेगा, व्यवस्थित करेगा।
बिल्कुल, उसे और मजबूत बनाएगा, बौद्धिक रूप से संतोषजनक बनाएगा। और ये जो किताब है सुम्मा थियोलॉजिका, ये इसी महान संश्लेषण, इसी मिलाप का नतीजा है। तो ये किताब सुम्मा थियोलॉजिका है क्या चीज़ आखिर? देखिए, ये कोई कहानी या नॉवल जैसी नहीं है। सुम्मा का मतलब ही होता है संग्रह या सारांश।
अच्छा, तो ये एक तरह की टेक्स्ट बुक हुई।
हाँ, कह सकते हैं धर्मशास्त्र के छात्रों के लिए लिखी गई एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप गाइड, जैसे किसी बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पर एक डिटेल्ड गाइड बुक, लेकिन सवाल जवाब के फॉर्मेट में।
और इसका जो केंद्रीय विचार है वो क्या है?
मूल विचार ये है कि आस्था और तर्क, यानी फेथ और रीजन, ये दोनों हमें एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं, और वो परम सच्चाई है ईश्वर।
तो ये दुश्मन नहीं, दोस्त हुए।
बिल्कुल, ये दो रास्ते हैं जो एक ही मंजिल पर मिलते हैं। ये किताब एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बनाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ईश्वर से शुरू होता है और घूम फिरकर अंत में सब कुछ ईश्वर में ही अपनी पूर्णता, अपनी मंजिल पाता है।
इसे वो एग्जिटस रेडिटस कहते हैं शायद, निकास और वापसी।
हाँ, बिल्कुल, ईश्वर से निकलना और ईश्वर में वापस लौटना। और इस बड़े नक्शे के अंदर एक्विनास उन बुनियादी सवालों को उठाते हैं जिनसे इंसान हमेशा से जूझता रहा है।
जैसे?
जैसे कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है?
हाँ।
अगर है तो वो कैसा है? ये दुनिया क्यों बनी? इंसान का असली मकसद क्या है? हमें एक अच्छी सार्थक जिंदगी कैसे जीनी चाहिए?
अच्छाई और बुराई क्या है?
पुण्य क्या है? पाप क्या है? जिंदगी के वो सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल।
हाँ, और जिस तरीके से वो इन सवालों को उठाते हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। स्कॉलास्टिक मेथड कहते हैं उसे।
वो कैसे काम करता है?
हर मुद्दे को पहले एक सवाल के रूप में रखते हैं, जैसे क्या ईश्वर का अस्तित्व है। फिर मजे की बात यह है कि वो पहले उस विचार के खिलाफ तर्क देते हैं जिसका वो खुद समर्थन करेंगे। इन्हें कहते हैं आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस।
अच्छा।
पहले विरोधियों के तर्क।
हाँ, ताकि बहस निष्पक्ष लगे। फिर एक छोटा सा कथन आता है, अक्सर बाइबल से या किसी पुराने सम्मानित विचारक से जो उनके अपने पक्ष में होता है, सेड कॉन्ट्रा। फिर एक्विनास अपना विस्तृत जवाब देते हैं, रिस्पोंडियो, जिसमें वो अपने तर्क पेश करते हैं, और आखिर में वो शुरू में उठाई गई आपत्तियों का एक एक करके खंडन करते हैं।
वाह, ये तो सोचने का एक बहुत ही अनुशासित तरीका है, सिर्फ मान लेने के बजाय हर पहलू पर विचार करना।
बिल्कुल। चलिए अब जरा इस बड़े ग्रंथ के मुख्य हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा तकनीकी ना हो। पहला हिस्सा, जिसे प्रीमा पार्स कहते हैं, वो मोटे तौर पर ईश्वर और सृष्टि के बारे में है।
मतलब सब कुछ कैसे शुरू हुआ, ईश्वर से।
हाँ, और यहीं पर एक्विनास वो मौलिक सवाल उठाते हैं, क्या ईश्वर का अस्तित्व है। उनका जवाब है हाँ, और वो कहते हैं कि हम इसे दुनिया को देखकर अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं।
और यहीं पर उनके वो मशहूर पांच रास्ते आते हैं, है ना, 5 ways।
बिल्कुल, ये पांच तर्क हैं जो दुनिया के अवलोकन से शुरू होते हैं और ईश्वर के अस्तित्व तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
जैसे कौन कौन से हैं वो, थोड़ा बताएंगे?
हाँ, जैसे एक तर्क है गति का। दुनिया में हर चीज चल रही है, बदल रही है, लेकिन हर चलने वाली चीज को किसी और ने चलाया होगा।
अच्छा,
तो ये सिलसिला पीछे कहां तक जाएगा? कोई तो पहला मूवर होना चाहिए जो खुद नहीं चलता, जिसे किसी ने नहीं चलाया, वो ईश्वर है।
और दूसरा?
दूसरा है कार्य कारण का। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो पीछे जाते जाते कोई तो पहला कारण होना चाहिए जिसका कोई कारण ना हो, वो ईश्वर है।
और बाकी तीन भी इसी तरह के तर्क हैं, संयोग, पूर्णता की श्रेणियां और डिजाइन।
हाँ, मोटे तौर पर वो इन तर्कों से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि तर्क हमें यहां तक ले जा सकता है कि हाँ, एक पहला कारण, एक परम सत्ता का अस्तित्व है।
फिर वो ईश्वर के स्वरूप पर बात करते हैं कि वो कैसा है।
हाँ, कि ईश्वर सरल है, मतलब उसके कोई हिस्से नहीं है, वो पूर्ण है, अनंत है, हर जगह मौजूद है और बदलता नहीं है। फिर वो सृष्टि की बात करते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को कुछ नहीं से, शून्य से, एक्स निहिलो बनाया।
और इंसान के बारे में क्या कहते हैं?
इंसान के बारे में कहते हैं कि हम शरीर और आत्मा का एक जोड़ हैं। हमारी आत्मा अमर है और वही हमें सोचने, समझने की, तर्क करने की शक्ति देती है।
अच्छा, तो ये हुआ पहला हिस्सा। अब आता है दूसरा, जो सबसे बड़ा है, सिकुंडा पार्स। ये नैतिकता और इंसान के वापस ईश्वर तक पहुंचने के सफर के बारे में है।
हाँ, यहाँ एक्विनास का सवाल है, इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या है, जिंदगी का अल्टीमेट गोल।
और उनका जवाब क्या है?
खुशी। बीएटीटूडो कहते हैं वो इसे, लेकिन वो साफ करते हैं कि असली, पूरी और स्थायी खुशी दुनिया की चीजों में, पैसे में या शोहरत में नहीं मिल सकती।
तो फिर कहाँ मिलती है?
वो मिलती है ईश्वर को जानने में, उसके साथ एक होने में, वही परम सुख है।
और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जीना कैसे चाहिए? यहीं पर शायद वो प्राकृतिक कानून की बात करते हैं, नेचुरल लॉ।
बिल्कुल सही, ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। एक्वाइनस मानते थे कि ईश्वर ने हमारे अंदर, हमारी इंसानी प्रकृति में ही सही और गलत की एक बुनियादी समझ डाल दी है।
मतलब हमें अंदर से ही पता होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा।
हाँ, मोटे तौर पे इसे हम अपनी तर्क बुद्धि से पहचान सकते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हो या ना मानते हो। जैसे अच्छा करो, बुराई से बचो, ये एक बुनियादी प्राकृतिक नियम है।
और जो सरकारें कानून बनाती हैं उनका क्या?
एक्वाइनस कहते हैं कि सरकारों के बनाए कानून, ह्यूमन लॉ, तभी सही और न्यायपूर्ण हैं जब वो इस प्राकृतिक कानून के मुताबिक हों। अगर कोई इंसानी कानून प्राकृतिक कानून के खिलाफ जाता है तो वो असल में कानून ही नहीं है।
वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और नैतिकता में सिर्फ नियमों का पालन करना ही काफी है?
नहीं, यहीं पर एक्विनास सद्गुणों, वर्च्यूस पर बहुत जोर देते हैं। सद्गुण मतलब अच्छी आदतें, अच्छा चरित्र।
जैसे कौन से सद्गुण?
चार प्रमुख सद्गुण हैं, विवेक, प्रूडेंस यानी सही फैसला लेने की क्षमता, न्याय, जस्टिस, सबके साथ उचित व्यवहार करना, साहस, फोर्टिट्यूड, मुश्किलों और डर का सामना करना, और संयम, टेम्परेंस, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू रखना।
तो फोकस सिर्फ गलत काम से बचना नहीं है, बल्कि
अच्छा इंसान बनना है। ये सद्गुण हमें बेहतर बनाते हैं और स्वाभाविक रूप से सही काम करने में मदद करते हैं।
और वो तीन धार्मिक गुणों की भी बात करते हैं ना, विश्वास, आशा और प्रेम।
हाँ, विश्वास, फेथ आशा, होप, और प्रेम या दान, चैरिटी। ये गुण सीधे हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। इनमें प्रेम को वो सबसे ऊंचा मानते हैं, और प्रेम का मतलब उनके लिए सिर्फ एक भावना नहीं है।
तो क्या है प्रेम?
प्रेम है दूसरे की भलाई चाहना। ये इच्छा शक्ति का एक सचेत कार्य है। सक्रिय रूप से दूसरे के वास्तविक भले की कामना करना और उसके लिए प्रयास करना।
ये बहुत सुंदर परिभाषा है। अच्छा, फिर आता है तीसरा हिस्सा, टर्शा पास। ये किस बारे में है?
ये हिस्सा ईसा मसीह पर केंद्रित है। एक्विनास के लिए मसीह वो पुल हैं जो इंसान और ईश्वर के बीच के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ते हैं।
वो उन्हें ईश्वर और इंसान दोनों मानते हैं।
हाँ, पूरी तरह से ईश्वर और पूरी तरह से इंसान। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, ये सब इंसान को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता और जरूरी कृपा या अनुग्रह, ग्रेस प्रदान करते हैं।
और इसी हिस्से में वो संस्कारों, सैक्रमेंट्स की बात करते हैं।
बिल्कुल।
जैसे बपतिस्मा, यूक्रिस्ट।
बिल्कुल। ये वो बाहरी चिन्ह और माध्यम है जिनके जरिए मसीह द्वारा अर्जित कृपा विश्वासियों तक पहुंचती है। एक्विनास इस किताब को जीवन के अंत, पुनरुत्थान, अंतिम न्याय, स्वर्ग और नर्क की बातों के साथ खत्म करना चाहते थे,
लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे, है ना?
हाँ, कहते हैं कि उन्हें एक बहुत गहरा रहस्यमय अनुभव हुआ जिसके बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ लिखा है वो मुझे भूसे जैसा लगता है।
ओहो, बाद में उनके शिष्यों ने उनके नोट्स के आधार पर इसे पूरा किया, जिसे सप्लीमेंटम कहते हैं।
सही। तो ये था एक बहुत ही संक्षिप्त सा ढांचा। अब अगर हम इस पूरी विशाल रचना से कुछ मुख्य संदेश या थीम निकालने की कोशिश करें तो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो है आस्था और तर्क का सामंजस्य। ये उनकी पूरी सोच की नींव है।
हाँ, कि सच्चाई एक ही है, इसलिए जो सच हम तर्क और विज्ञान से जानते हैं वो उस सच से टकरा नहीं सकता जो हमें आस्था से मिलता है। दोनों एक ही ईश्वर की ओर इशारा करते हैं।
उनका वो मशहूर वाक्य भी है, अनुग्रह प्रकृति को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे पूर्ण बनाता है। ग्रेस परफेक्ट्स नेचर।
बिल्कुल। यानी ईश्वरीय मदद हमारी प्राकृतिक क्षमताओं, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा शक्ति को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें सुधारती है, ऊंचा उठाती है और पूरा करती है।
दूसरी बड़ी बात है प्राकृतिक कानून और वस्तुनिष्ठ नैतिकता का विचार।
हाँ, कि सही गलत सिर्फ हमारी मर्जी या समाज की राय पर निर्भर नहीं है। एक बुनियादी यूनिवर्सल नैतिकता है जो इंसानी स्वभाव में ही लिखी हुई है और जिसे कोई भी इंसान अपनी तर्क बुद्धि से समझ सकता है।
ये आज के जमाने के लिए बहुत प्रासंगिक है जहां अक्सर रिलेटिविज्म की बात होती है कि सबकी अपनी अपनी नैतिकता है। एक्विनास कहते हैं नहीं, कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी हैं।
तीसरा है सद्गुणों की केंद्रीयता। एक अच्छी जिंदगी सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है।
हाँ, बल्कि ये अच्छे चरित्र की आदतें डालने के बारे में है। ईमानदार बनना, बहादुर बनना, न्यायप्रिय बनना, समझदार बनना, ये आदतें हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा काम करने की ओर ले जाती हैं।
फोकस क्या नहीं करना है से ज्यादा कैसा इंसान बनना है पर है।
बिल्कुल। चौथा, ईश्वर ही प्रथम कारण और अंतिम लक्ष्य है। एग्जिटस रेडिटस वाली बात।
हाँ, के सब कुछ ईश्वर से आता है, एग्जिटस, और सब कुछ अंततः उसी की ओर वापस जाने के लिए बना है, रेडिटस। ये विचार दुनिया को, हमारे अस्तित्व को एक मकसद, एक दिशा देता है।
ऐसा नहीं कि सब कुछ बस यूं ही है बेतरतीब। हर चीज का एक अंतिम लक्ष्य, टेलोस है, और वो लक्ष्य ईश्वर से जुड़ा है। ये जिंदगी को एक बड़ा अर्थ, एक सुसंगतता देता है।
और पांचवा, कह सकते हैं ब्रह्मांड बोधगम्य है और ईश्वर को कुछ हद तक जाना जा सकता है।
मतलब?
क्योंकि दुनिया एक तर्कसंगत, बुद्धिमान ईश्वर ने बनाई है, इसलिए इसमें व्यवस्था है, पैटर्न है, और इसे हमारी बुद्धि समझ सकती है। विज्ञान संभव है क्योंकि दुनिया समझने लायक है।
और ईश्वर के बारे में
हम तर्क से ये जान सकते हैं कि ईश्वर है, उसके कुछ गुण, जैसे वो अच्छा है, बुद्धिमान है, जान सकते हैं। लेकिन ईश्वर असल में क्या है, उसकी पूरी अनंत प्रकृति क्या है, ये हमारी सीमित समझ से परे है। हमारा ज्ञान सादृश्य या एनालॉजी पर आधारित होता है।
मतलब हम ईश्वर को उन गुणों से जानते हैं जो हमें सृष्टि में दिखते हैं, लेकिन ईश्वर में वो गुण असीम रूप से ज्यादा और अलग तरह से हैं।
बिल्कुल। एक्विनास के लेखन में कुछ ऐसे विचार हैं जो बार बार आते हैं और उनके दर्शन का निचोड़ लगते हैं। कुछ पे बात करें?
हाँ, जरूर। जैसे पहला तो हमने अभी कहा, अनुग्रह प्रकृति को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे पूर्ण बनाता है। ये उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण को दिखाता है।
दूसरा,
प्राकृतिक कानून कुछ और नहीं बल्कि तर्कसंगत प्राणी की शाश्वत कानून में भागीदारी है। ये नैतिकता को बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारी अपनी तर्कसंगत प्रकृति का हिस्सा बनाता है।
मतलब सही गलत को हम खुद समझ सकते हैं क्योंकि हम तर्कसंगत प्राणी हैं।
तीसरा वो प्रेम वाला, प्रेम करना दूसरे की भलाई चाहना है।
ये प्रेम की बहुत ही क्रियाशील इच्छा शक्ति पर आधारित परिभाषा है, सिर्फ एहसास नहीं।
चौथा, हम जान सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि ईश्वर अपने सार में क्या है। ये बौद्धिक विनम्रता सिखाता है।
बिल्कुल, हम बहुत कुछ जान सकते हैं पर सब कुछ नहीं, खासकर जब बात असीम ईश्वर की हो।
और पांचवा वो कानून वाला, कानून सामान्य भलाई के लिए तर्क का एक आदेश है जिसे समुदाय की देखभाल करने वाले द्वारा बनाया और घोषित किया गया है।
ये आज भी बहुत जरूरी परिभाषा है। कानून सिर्फ ताकतवर की मर्जी नहीं होना चाहिए, उसे तर्कसंगत होना चाहिए, सबके भले के लिए होना चाहिए और उसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए।
सही बात है। ये सारे विचार सुनने में तो बहुत गहरे और महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की हमारी तेज रफ्तार, अक्सर बिखरी हुई सी जिंदगी में इन मध्ययुगीन विचारों का क्या काम, ये कैसे लागू होते हैं?
देखिए, कई तरीकों से लागू हो सकते हैं। पहला है एकीकृत सोच, इंटीग्रेटेड थिंकिंग। एक्विनास हमें चीजों को अलग अलग डिब्बों में बंद करके नहीं बल्कि जोड़कर देखना सिखाते हैं। तर्क, नैतिकता, अंतिम लक्ष्य, सब एक साथ।
जैसे आजकल हम काम और निजी जिंदगी को अलग रखते हैं या बिजनेस में मुनाफे को नैतिकता से अलग देखते हैं।
बिल्कुल, एक्विनास की सोच हमें याद दिलाती है कि हर बड़े फैसले में ये पूछना जरूरी है, क्या ये सही है, इसका अंतिम नतीजा क्या होगा, सिर्फ ये नहीं कि क्या ये फायदेमंद है या क्या हम ये कर सकते हैं।
दूसरा, चरित्र निर्माण पर जोर, फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। आजकल हमारा ध्यान अक्सर नियमों पर, ये मत करो वो मत करो पर ज्यादा होता है।
हाँ, एक्विनास कहते हैं कि असली चीज है अच्छी आदतें डालना, सद्गुण विकसित करना, जैसे ईमानदारी की आदत डालना या मुश्किलों में हिम्मत बनाए रखने की आदत डालना।
तो ये सिर्फ गलत काम से बचने वाला नहीं बनाता बल्कि असल में एक अच्छा गुणी इंसान बनाता है। ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है।
तीसरा है रचनात्मक संवाद का तरीका, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। जिस तरह एक्विनास पहले विरोधी पक्ष के तर्क रखते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, फिर अपना जवाब देते हैं।
हाँ, वो हमें सिखाता है कि दूसरों के नजरिए को ईमानदारी से समझना कितना जरूरी है, भले हम उनसे सहमत न हों।
बिल्कुल, आज जहाँ बहसें अक्सर व्यक्तिगत हमलों और चीख चिल्लाहट में बदल जाती हैं, ये तरीका हमें सिखाता है कि कैसे शांति से, तर्क के साथ अपनी बात रखी जाए और दूसरों की बात भी सम्मान से सुनी जाए।
और क्या हो सकता है चौथा शब्द? जीवन में उद्देश्य ढूंढना,
फाइंडिंग पर्पस।
हाँ बिल्कुल, एक्विनास का ये विचार कि हर चीज का एक मकसद है और सब कुछ एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, ये जिंदगी को एक गहरा अर्थ दे सकता है।
ये हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ सिर्फ इत्तेफाक से नहीं हैं, हमारी प्रतिभाओं का, हमारे जीवन का एक बड़ा मतलब हो सकता है अगर हम उसे सही दिशा में किसी बड़े भले के लिए इस्तेमाल करें।
पांचवा, न्याय और मानवाधिकारों का आधार,
बेसिस फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स।
वो प्राकृतिक कानून वाली बात।
हाँ, ये विचार के कुछ नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल हैं जो हर इंसान पर लागू होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंसान है। ये सरकारों या समाज के दिए हुए नहीं हैं। ये सोच दुनिया भर में मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए एक मजबूत दार्शनिक आधार देती है।
इससे हम अन्यायपूर्ण कानूनों को, व्यवस्थाओं को चुनौती दे सकते हैं, हर व्यक्ति की गरिमा का बचाव कर सकते हैं।
और छठा, कामकाजी जीवन में नैतिकता, प्रोफेशनल एथिक्स भी। व्यापार में उचित मूल्य क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी क्या है,
इन सब पर एक्विनास के विचारों में आज के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है। उनका यह सिद्धांत कि आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि इंसान की भलाई और विकास होना चाहिए,
ये आज के बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक जरूरी संदेश है।
तो इस पूरी बातचीत से अगर हमें एक सबसे बड़ा सबक लेना हो तो वो क्या होगा? मेरे लिए तो ये एक्विनास का दुनिया को देखने का नजरिया है, एक तर्कसंगत, उद्देश्यपूर्ण और आपस में जुड़े हुई वास्तविकता।
हाँ, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा देते हैं जिसमें विज्ञान और धर्म या तर्क और आस्था, वो दुश्मन नहीं लगते बल्कि वो सच्चाई की मानवीय खोज में साथी बन जाते हैं।
मैं भी सहमत हूँ। सुमा की जो स्थायी शक्ति है वो शायद इसकी जबरदस्त संश्लेषण क्षमता है। ये अलग अलग दिखने वाली चीजों के बीच पुल बनाती है, अरस्तु और बाइबल, दुनियावी और पवित्र, तर्क और विश्वास।
और ये दिखाती है कि कैसे इंसान, जो शरीर भी है और आत्मा भी, जिसके पास बुद्धि भी है और इच्छा भी, अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरे अस्तित्व को एक परम अच्छाई की ओर निर्देशित करके ही सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि पा सकता है।
और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया जो इतनी पटी हुई लगती है, जहां अक्सर कहा जाता है कि सबकी अपनी अपनी सच्चाई है, क्या वहां एक्वाइनस जैसा एक भव्य, सब कुछ जोड़ने वाला एकीकृत नजरिया मुमकिन भी है या जरूरी भी है?
या क्या प्राकृतिक कानून जैसी अवधारणाएं, जिनका आधार तर्क में है, आज भी अलग अलग संस्कृतियों और विश्वासों के लोगों के बीच संवाद का एक जरिया बन सकती हैं, भले ही वे उसकी धार्मिक जड़ों से सहमत ना हों?
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।